الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में हम अपने अंदर के जो विचार हैं नक्शबंदीदा मुलाकातों की किताब मिसाली मतलब से पढ़ते हैं, और इसमें अब आखिरी मौजू चल रहा है मिसाली शागिर्द का। तो उसमें हम पेज नंबर 196 के ऊपर थे, और पिछली बार हमने आखिरी बार जो पढ़ी थी वो नुकात थे जो हजरत ने हुसूल इल्म के आदाब के तहत लिखे थे। और ये सारे के सारे आदाब जो हैं वो तफसीर कबीर में इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह कहफ की सिर्फ एक आयत के ज़मन में बयान पाए। ठीक है, हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा। तो इस आयत से जो है ना वो 21 नुकात निकाल करके अपनी तफसीर में हज़रत इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमा दिए। तो वो हमने अलहम्दुलिल्लाह पिछले क्लास के अंदर पढ़ के मुकम्मल किए। अब इसके बाद जो अगला उन्वान है इस मज़मून में वो है उस्ताद का अदब और एहतराम। उस्ताद का अदब और एहतराम, तो उसके तहत फरमाते हैं कि शागिर्द को चाहिए कि वो उस्ताद को माँ बाप की तरह तरजीह दे, उस्ताद को माँ बाप की तरह तरजीह दे। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह पहले इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआ करते थे, फिर उसके बाद अपने वालिदैन के लिए दुआ करते थे। तो माँ बाप की तरह तरजीह दे एक जुमले में ये बयान कर रही हैं, और अगले जुमले में बयान फरमा रहे हैं कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह जो कि सबसे ज़्यादा ख़ास शागिर्द थे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इमाम आज़म के, तो वो पहले जो है वो अपने उस्ताद के लिए दुआ करते थे और उसके बाद जो है वो अपने वालदैन के लिए दुआ करते थे। तो अब इसका एक बहुत ही सादा एक्सप्लेनेशन तो यही हो सकती है कि जाहिर है दोनों के लिए एक साथ तो नहीं दुआ कर सकते थे ना, तो जाहिर है किसी को तो पहले रखना था किसी को तो बाद में रखना था। तो एक जवाब जो है वो उसका तो ये हो सकता कि जी रैंडमली, राइट, रैंडमली जो है ना वो बस अपने उस्ताद को पहले रख लिया और वालदैन को जो है वो बाद में रख लिया। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे दलाइल हैं हमारे असलाफ की जिंदगियों से कि जिससे ये बात साबित होती है कि खाली ये एक रैंडम अमल नहीं था कि उस्ताद को पहले रख लिया और वालदैन को बाद में रख लिया, बल्कि एक्सप्लिसिटली और इंटेंशनली जो है वो उस्ताद को जो है वो पहले रखा जाता था और वालिदैन को जो है वो बाद में रखा जाता था। ठीक है, तो फिर पिछला जो जुमला है कि माँ बाप की तरह तरजीह दे वो किस लिए फरमाया, ये क्यों फरमाया कि माँ बाप की तरह तरजीह दे, उसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा अपना अपनी समझ बयान फरमाएं कि हजरत ने पहले जुमले के अंदर ये क्यों लिखा कि उस्ताद को माँ बाप की तरह तरजीह दे, ये लिखने की क्या वजह थी। भाई सीधा सीधा लिख देते कि उस्ताद को ज्यादा तरजीह दे और वालदैन को जो है वो उसके बाद तरजीह दे, बात खत्म हो जाती है। और अगली मिसाल से जो है इमाम अबू यूसुफ वाली जो मिसाल है तो उससे जो है वो उसके ऊपर ताकीद हो जाती। ठीक है, तो तरह तरजीह दे का लफ्ज इस्तेमाल करने की क्या वजह समझ में आती है। अब हमने पूछा तो नहीं है जाकर के हजरत से, लेकिन बात करते हैं किसी चीज के ऊपर तो फिर सोचते हैं ना कि भाई ऐसा मुसन्निफ ने ऐसे क्यों फरमाया, शायर ने ऐसे क्यों फरमाया। तो फिर वो तशरीह जब हो रही होती है तो फिर तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं जी, तो क्यों फरमाया भाई ऐसे। मैंने भी कोई पहले से सोच करके नहीं रखा हुआ था, अभी बल्कि बस समझना है कि आपके सामने ही शुरू किया है, तो अब जरूरी नहीं है कि मेरे जहन में कोई ख्याल आ गया हो तो आपके जहन में भी ख्याल आ गया। लेकिन होती हैं कुछ और रीजंस भी होती हैं उसकी। इन्होंने जवाब दिया, बिकॉज पेरेंट्स आर टू बी रिस्पेक्टेड एट नंबर वन, पेरेंट्स आर टू बी रिस्पेक्टेड एट नंबर वन। ठीक है, ये तो वजह समझ में नहीं आई आपके, मतलब मेरे सवाल का जवाब नहीं बन रहा आपसे। मैं ये तो नहीं पूछ रहा कि उन्होंने गलत कहा कि उन्होंने सही कहा, ये तो आपसे सवाल ही नहीं किया हमने। जो आप जो है वो जवाब ये दे रहे हैं कि जी उसका के जवाब का मतलब यही नजर आ रहा है ना मुझे तो, कि ये गलत कहा है। ठीक है, ये तो आपसे पूछ ही नहीं रहे हम भाई, सवाल जो कर रहे हैं वो बताए ना, उसका जवाब बताए ना। जी सवाल का जवाब बताए ना, सवाल समझे पहले क्या है सवाल। अक्सर जो है ना वो सवाल पे सवाल होना चाहिए कि सवाल तो बताएं है क्या सवाल, फिर उसके बाद जवाब दे रहिएगा। जी क्या वजह बनती है कि हजरत ने जो है ना वो ये जुमला इस्तेमाल किया कि वालदैन की तरह उस्ताद को। जी चले, कुछ जवाब आए हैं कि जी रूहानी बाप ऑलवेज कम्स फर्स्ट देन बायोलॉजिकल रिलेशनशिप। नहीं गलत बात बिल्कुल, मैं अब ये सवाल यही नहीं कर, सवाल ही नहीं कर रहा ये वाला आपसे, तो आपसे क्यों जवाब दे रहा है। क्योंकि उस्ताद रूहानी तरबियत करते हैं जो हमेशा की कामयाबी का सबब बनते हैं, और ईमान वाले का असल मकसूद तो यही है। गलत जवाब, यानी आप भी सवाल नहीं समझे। बरए मेहरबानी सवाल दोबारा करते हैं। चलें शुक्र है, ज्वाइन करने में थोड़ी देर हो गई। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि सवाल समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा पूछ रहे हैं, भाई आप सवाल दोबारा से समझा दें। तो सवाल ये है कि हजरत ने जो ये कहा कि शागिर्द को चाहिए कि वो उस्ताद को माँ बाप की तरह तरजीह दे, तो तरह तरजीह दे क्यों कहा, ज्यादा तरजीह दे क्यों नहीं कहा, ज्यादा तरजीह दे क्यों नहीं कहा, तरह तरजीह दे क्यों कहा। जी अब जो है इन्होंने जो जवाब दिए हैं ना, दिस इज गेटिंग देयर। ठीक है, शायद कुछ लोग उस्ताद की इज्जत में कमी करते हैं, शायद शायद से आपकी क्या मुराद है, शायद शायद जैसे माँ बाप के लिए नरम गोशा होता है। ठीक है, देखिए उसकी दो वजूहत है, दो वजूहत समझ में आती है। ठीक है, एक वजह तो ये समझ में आती है कि जो हमारे हमारे कल्चर के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर, ठीक है, जो इज्जत का मुकाम वालदेन को दिया जाता है ना, ठीक है, और उसके ऊपर जो है वो यानी बहुत ज्यादा बात की जाती है और बहुत ज्यादा उसके ऊपर एम्फसाइज किया जाता है, तो उस्ताद के ऊपर बिल्कुल भी इस तरह का एम्फसाइज नहीं किया जाता। पुराने जमानों में किया जाता होगा, अब तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता। और ये जो बयान है हजरत का, ये तो अभी मौजूदा जमाने का बयान है ना, विद इन लास्ट 10 ईयर्स का। ठीक है, तो उस्ताद की इज्जत एक ऐसी चीज है कि जिससे लोग नावाकिफ हो चुके हैं, जबकि वालिदैन की इज्जत एक ऐसी चीज है कि जिससे लोग अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। करते ना हो वो और बात है, करते ना हो वो और बात है, लेकिन वाकिफ बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना। इसी वजह से कोई दीनदार हो उसको भी पता होती है, कोई दीनदार ना हो उसको भी पता होता है वालिदैन की इज्जत के बारे में, ठीक है ना, कि भाई ये बहुत जरूरी है, बहुत जो है वो अहम है, और इससे जो है वो फलाने फायदे होते हैं, और माँ बाप का ये हक है और माँ बाप का वो हक है। ठीक है ना, प्रीटी मच एवरीवन नोज दिस। ठीक है ना, और ये जो है ना बहुत ज्यादा जो है वो इसकी तकरार भी की जाती है हमारे यहाँ। ठीक है, तो अब जो है ना उस्ताद की इज्जत माँ बाप के साथ कंपेयर करने में ये चीज जो है ना समझाना एक बड़ा मुश्किल काम है इस वक्त लोगों को, कि हलक से इस बात को उतरवाना कि उस्ताद की इज्जत जो है ना ये माँ बाप की इज्जत से बढ़ करके है, ये मुआशरा इस वक्त एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है इस बात। ठीक है ना, लोग एक्सेप्ट करने के लिए इस बात को तैयार नहीं है। इसी वजह से आपने जो ये कहा ना, शायद कुछ लोग उस्ताद की इज्जत में कमी करते हो, नहीं, माँ बाप के मुकाबले में सभी उस्ताद की इज्जत में कमी करते हैं। ठीक है ना, इल्ला किसी पे उंगलियों के ऊपर आप काउंट कर लें किसी को। ठीक है, तो एक तो ये वजह कि यानी माँ बाप की इज्जत के मुकाबले में उस्ताद की इज्जत की बात करना जो है ना, ये एक जिसको कहते हैं ना शजर ए ममनुआ, ये एक बड़ा ही जो है ना वो एक ऑब्जेक्शनेबल किस्म का एक एक टॉपिक है हमारे इस्लामी हमारे आजकल के इस्लामी माशरे के अंदर, ठीक है ना। और दूसरी एक और भी वजह समझ आती है इसकी, वो ये है कि उस्ताद की इज्जत कितनी ज्यादा है इसके ऊपर कोई आपको नस से दलील नहीं मिलती, नस से दलील नहीं मिलती, ठीक है। नस क्या चीज होती है? नस के लिए जो सबसे अहम और सबसे जो यानी स्ट्रॉन्गेस्ट नस है ना, कुरान मजीद की आयत, ठीक है ना, या हदीस मुबारका के अल्फाज, ठीक है ना, हदीस मुबारका के अल्फाज और कुरान मजीद की आयत, इससे जो है ना वो कोई ऐसी क्लियर दलील नहीं मिलती कि जी उस्ताद की इज्जत ज्यादा है और वालदेन की इज्जत उसके बाद आती है, नहीं मिलती है दलील, ठीक है। तो अब ये दलील कहाँ से निकालते हैं फिर कि उस्ताद की इज्जत ज्यादा है, जरा बता दें। माशाल्लाह उलमाए कराम भी काफी सारे मौजूद हैं, ठीक है, तो इतना तो आप बता सकते हैं कि जब नस से दलील नहीं मिलती कि उस्ताद की इज्जत ज्यादा है वालदेन की इज्जत के मुकाबले में, तो फिर दलील कहाँ से लेकर के आए? अपनी मनमर्जी, अपनी चाहत के ऊपर, अपनी ख्वाहिश के ऊपर दलील लेकर के आ रहे हैं दीन के अंदर? नहीं, चाहत के ऊपर तो दलील नहीं लेकर के आ सकते दीन के अंदर, ठीक है ना। तो इन्होंने डायरेक्ट मैसेज में डरते डरते जवाब दिया है कि इसके लिए जो दलील मिलती है ना वो कयास से मिलती है, इजमा से भी नहीं मिलती। इजमा में भी कोई ऐसा नहीं है कि आपकी किताब के अंदर उलमा का इजमा जो है ना वो कहीं पर डॉक्यूमेंटेड है कि जी ऐसा इसकी इनकी इज्जत पहले आती है फिर उनकी इज्जत उसके बाद में आती है ना। ये कोई ऐसा यानी मुफ्ता भी ही कौल ये नहीं मिलेगा जिसके ऊपर जो है ना वो उलमाए कराम का इजमा हो गया हो, ये नहीं मिलेगा आपको इसके ऊपर, ठीक है ना। तो कहाँ से इसकी दलील मिलती है? इसकी दलील कयास से मिलती है, इसकी दलील कयास से मिलती है। और कयास जो है वो जाहिर है फिर बहुत सारे लोग कहेंगे भाई कयास जो है वो कैसे ज्यादा अहम हो सकता है, नस से दलील तो वालिदैन के लिए मिलती है ना, कि बिल वालिदैन एहसाना, जब जो है वो क्या कहते हैं अल्लाह ताला ने तौहीद के बारे में जब हुक्म फरमाया और जो है वो शिर्क से जो है वो बचने का हुक्म फरमाया तो उसके बाद जो है वालिदैन का जिक्र किया, तो उस्ताद साहब कहाँ से बीच में आ गए, ठीक है ना। उस्ताद को आप क्यों बीच में लेकर के आ रहे हैं कि जी उस्ताद की इज्जत जो है वालिदैन की इज्जत से ज्यादा है, ठीक है। तो ये दो बड़ी बड़ी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से है ना ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो किसी के समझ में नहीं आता, जिसके जो मान भी लेते हैं ना वो भी इस पे अमल नहीं कर पा रहा हो, अमल नहीं कर पा रहा होता इसके ऊपर कि उस्ताद को वालदैन के मुकाबले में ज्यादा इज्जत दे रहा हूँ। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि उस्ताद को जो है ना वालदैन के ऊपर तरजीह दे रहे होते हैं, और ये कौन लोग होते हैं, ये कौन लोग होते हैं? अगर लकीर के फकीर होंगे ना वो नहीं कर सकते। बहरहाल लकीर का फकीर का लफ्ज जो है कुछ बहुत ही ज्यादा नेगेटिव भी हो सकता है, उसको चले ना भी इस्तेमाल करें, ठीक है। तो वो वालदेन के ऊपर तरजीह देने वाले जो है ना वो वही होते हैं जो कि अकल शरीफ को इस्तेमाल करने वाले लोग, अकल शरीफ को इस्तेमाल करने वाले, ठीक है ना। जो अकल शरीफ को इस्तेमाल नहीं करते ना, जो कि हाँ भाई जिसने जो कह दिया वाह 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 वाह, अब अगला बंदा आके जो कहेगा वाह 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 वाह, है ना, वो बस हर एक के ऊपर है ना वो वाह 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 करने उनको आता है, अपनी अकल उनकी कोई नहीं होती, ठीक है, अपनी समझ कोई नहीं होती। कयास का ताल्लुक किस चीज के साथ है? कयास का ताल्लुक अकल के साथ है, लॉजिकल इन्फ्लुएंस। भाई जब ऐसे ऐसे है तो फिर इसका नतीजा यही होगा ना, ठीक है ना। तो अब कोई कहे कि नहीं 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 शरीयत के अंदर तो है ना वो तो कुरान मजीद पहले आता है, फिर हदीस मुबारक दूसरे नंबर पे आती है, फिर इजमा तीसरे नंबर पे आता है, फिर कयास चौथे नंबर पर आता है, आप कयास को जो है वो कुरान मजीद की आयत के ऊपर कैसे तरजीह दे सकते हैं, ठीक है, कयास को कुरान मजीद की आयत के ऊपर और हदीस मुबारक के ऊपर कैसे तरजीह दे सकते हैं? तो भाई आप ऐसे बंदे से पूरा बात ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। वाह 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 वाह, क्या जबरदस्त किस्म की दलील लेकर के आए, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, ठीक है। तो ये जो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह, या तो पता नहीं गड़ा हुआ वाक है ये जो हमारे मशाइख बयान करे चले जा रहे हैं इस किस्म के वाक्य, आपके वालदैन वालदैन के बारे में बाद में दुआ करते थे और शेख के बारे में पहले दुआ करते थे, ठीक है, तो या तो वो गड़ा हुआ वाक है या ये भाई कि अगर इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह काम कर रहे थे तो उनके पास दलील नहीं थी, उनके पास दलील नहीं थी, राइट, वो हमसे कम अकल इंसान थे, जो कि जो है वो कयास की बुनियाद पर जो है इमाम अबू हनीफा के बारे में पहले दुआ मांग रहे हैं, और जो है वो अपने वालदैन के बारे में बाद में दुआ मांग रहे हैं। अकल शरीफ इस्तेमाल करेंगे तो बात क्लियर हो जाती है, लेकिन अगर अकल शरीफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, किताब में पढ़ा हुआ जो है ना वो एक तरतीब जो आपने पढ़ लिया और आपको पूरी तरह से बात भी समझ में नहीं आई, तो फिर आप इस बात को नहीं समझ सकते। हमारे मशायख जो बात करते हैं ना वो ऐसे खामखा में नहीं कर देते, इसके लिए बड़ी ठोस दलील है। और ये नस को भी अकल से इंसान समझता है ना, ऐसा कोई थोड़ी है कि बिल्कुल ही आप अकल को पैदल रख करके जो है वो भाई फकीक क्यों होता है कोई, फकीक राइट, फकीक क्यों होता है? क्या वो अल्फाज कुरान के मानी समझ जाने के बाद वो फकीक बन जाता है? हदीस मुबारका के अल्फाज के जो है वो तर्जुमा कर पढ़ लेने के बाद कोई फकीक बन जाता है? राइट, तो उसने तो इस्तेम्बात करना होता है ना, इस्तेम्बात जो है वो खाली अल्फाज की बुनियाद पर तो नहीं होता, खाली जाहिर की बुनियाद पर तो नहीं होता, उसके तो पीछे एक बड़ी गहराई होती है, बड़ी तफसील होती है उसके पीछे, ठीक है ना। तब कहीं जाकर कोई शख्स जो होता है वो फकीह कहलाने के काबिल होता है, ठीक है। खाली जो है वो आपने यानी कोई किताब पढ़ ली, किताब पढ़ा दी, तो ऐसे आप हर बंदा नहीं फकीह बन सकता है। तो बहरहाल इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह वो यानी अव्वल तरीन दर्जे के फुकहा में से हैं, मुज्तहिदीन में से है, क्योंकि इमाम अबू ये जो हनफी फिक है ये सिर्फ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के फतवों के ऊपर नहीं है, बल्कि जो शेखैन हैं और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, इनका यानी बुनियादी तरीन मुकाम है हनफी फिक के अंदर, ठीक है। तो वो अपने शेख के लिए पहले दुआ मांगा करते थे और वालदैन के लिए बाद में दुआ मांगा करते थे, और खाली दुआ मांग करके काम नहीं चल जाता। अगर आप जो है ना वो हुक्म जो है वालदैन का मान रहे हो, जब शेख जो है वो कोई दूसरी बात कह रहा हो कि भाई ऐसे नहीं, इससे नुकसान हो जाएगा, आखिरत का नुकसान हो जाएगा, दुनिया का भी नुकसान हो जाएगा, तो उस मौके पर जो है नहीं, बात तो मैंने उनकी माननी है, वालदैन की माननी है मैंने बात, ठीक है ना, दुआ मैं आपके लिए पहले करूंगा लेकिन बात मैंने उनकी माननी है, ठीक है। तो ऐसी दुआ नहीं चाहिए भाई, ऐसी दुआ नहीं चाहिए, रखें अपने पास अपनी दुआ को, ठीक है। लेकिन सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द ही थे, और सारे सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने माँ बाप से भी ज्यादा तरजीह देते थे, हैं? तो भाई ये तो अकल इस्तेमाल कर रहे हैं ना आप यहाँ पर, ठीक है ना, अकल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और वहां पर क्या होगा, वहां पर ये होगा जवाब, जो जो वालदैन कैंप वाले लोग हैं वो उसके ऊपर जवाब देंगे, क्योंकि उनके वालदैन तो काफिर थे और नबी अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी थे। ये जवाब बड़ा आसानी, बड़ी तेजी के साथ ये जवाब आता है कि वो तो अल्लाह के नबी थे, अब उनके बाद तो कोई अल्लाह का नबी है ही नहीं, आ ही नहीं सकता अल्लाह का नबी कोई उसके बाद, ठीक है ना। तो उसके बाद तो फिर माँ बाप ही माँ बाप रह जाते हैं भाई, अल्लाह का नबी तो दुनिया से पर्दा फरमा गए, अब तो माँ बाप रह गए, ठीक है। तो कयास तो फिर इधर नहीं चलता ना फिर उसके बाद फिर, राइट, क्योंकि अल्लाह के नबी तो दुनिया से पर्दा फरमा गए, आप किधर से लेकर आएंगे अब अल्लाह के नबी को, ठीक है। तो भाई वालिदैन के जो है ना ये जो सिचुएशन है, ये थोड़ी अकल शरीफ को इस्तेमाल करेंगे तब बात समझ में आएगी, वरना नहीं समझ में आती ये वाली बात, ठीक है। हमारे मशायख, हमारे हजरत और सारे मशायख जो है क्या बात कर रहे होते हैं, ऐसी खामखा की बगैर दलील के बगैर जो है वो समझ के बात कर लेते हैं, राइट, कि माँ बाप जो है वो ऊपर से नीचे लाने का सबब बन रहे होते हैं, शेर जो है वो नीचे से ऊपर ले जाने का सबब बन रहा होता है, कोई हैसियत नहीं है इस बात की, कोई ऐसे ही खामखा में इतनी बड़ी बात कर दी कि शेर जो है वो नीचे से ऊपर ले जाने का सबब बन रहा होता है, और क्या उसके बाद ऊपर कम दलील है उसके ऊपर कि माँ बाप जो है वो बेशक होंगे मुखलिस, आजकल तो वैसे भी जरा उसमें भी थोड़ी सी कमी नजर आ जाती है, बहुत सारे माँ बाप के जो है ना वो दूसरी प्रायोरिटीज भी क्लियर कट नजर आ रही होती है, लेकिन ठीक है, माँ की ममता, माँ की जो है वो मोहब्बत, वो अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत को जो है माँ की मोहब्बत से तशबीह दे करके समझाया, सुबह को भी ख़वातीन में भी यही बात हो रही थी, ठीक है। तो वो सारी जगह अपनी जगह पर रहती है, माँ बाप का इखलास ठीक है जी, बिल्कुल सही है, माँ बाप बिल्कुल मुखलिस होते हैं, माँ बाप अपनी औलाद का भला चाहते हैं, माँ बाप अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं चाह सकते हैं, सब कुछ सही है, लेकिन क्या माँ बाप के पास इल्म भी होता है, राइट, क्या माँ बाप के पास इल्म भी होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, हराम क्या है, हलाल क्या है, फर्ज क्या है और वाजिब क्या है, और मकरूह तहरीमी क्या है, मकरूह तंजीही क्या है, राइट, किससे जो है वो कितना बड़ा अजाब मिलना है, किससे जो है वो कितना बड़ा सवाब मिलना है, और दुनिया के अंदर कैसे कैसे जो है फितने मौजूद हैं, कैसे कैसे जो है वो इंसान को शैतान जो है वो ट्रैप कर रहा होता है अपने जालों के अंदर, क्या माँ बाप के पास ये इल्म होता है? अगर है तो फिर वो शेख हैं, अगर है फिर वो एक अलग डिस्कशन है, वो अलग डिस्कशन की भी जरूरत नहीं है, बल्कि फिर वो बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। तो आजकल जो है ना वो कुछ कुछ मशाइख में भी इस किस्म की बहस चली थी कुछ दिन पहले, है ना, इसी बात बात के ऊपर। तो उनमें से जो जो साहब थे ना, जो कि इस बात के ऊपर मुसिर थे कि नहीं वालिदैन शेर से अफजल हैं, ठीक है, तो वो थे बड़े यूनिक। वो जो शेख साहब थे ना, जो कि इस बात के ऊपर दलील, यानी इस बात के ऊपर कायम, दलील वही तो खैर नहीं दे रहे थे, लेकिन इस बात के ऊपर कायम थे कि जी वालदैन शेख से अफजल हैं, तो उनका जो है ना वो बैकग्राउंड ये था कि उनके अपने जो वालिद साहब थे ना वो बहुत बड़े शेख थे, बल्कि हैं, ठीक है ना। तो मैं यही कह रहा था फिर साथियों को कि भाई इनके लिए तो वाकई ऐसा ही है, क्योंकि इनके वालिद और इनके शेख जो है ना दोनों एक ही शख्सियत के अंदर हैं, दोनों एक ही शख्सियत हैं, तो इनके लिए तो कोई जरूरत ही नहीं है इधर उधर देखने की, ठीक है ना। लेकिन भाई अपने ऊपर जो है वो सारी दुनिया को तो कयास नहीं कर सकते ना। इसी तरह की एक दूसरी मिसाल, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी था, मैं कहता हूँ राइट, मुफ्ती तकी उस्मानी, तो इनकी जो इस्लाही बैत थी वो किनके साथ थी, हजरत अब्दुल हई आरफी रहमतुल्लाह अलैह के साथ, अब्दुल हई आरफी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के अजल खुलाफा में से थे, ठीक है ना। इस्लाही बैत, इस्लाही ताल्लुक उनके साथ था, ठीक है ना। लेकिन इनके वालिद साहब कौन थे, हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के आप बातों में सुने, आप उनकी किताबों में पढ़ें, आप उनके आर्टिकल्स के अंदर पढ़ें, वो एक तरफ जो है ना वो अब्दुल हई आरफी रहमतुल्लाह अलैह को, जी मेरे शेख ने ये कहा, मेरे शेख ने मुझे, है ना, लेकिन दूसरी तरफ जो है ना वो पूरी किताब लिख रहे हैं, मेरे वालिद मेरे शेख, राइट, मेरे वालिद मेरे शेख, ठीक है। तो भाई उनके वालिद थे ऐसे जो कि वाकई शेख थे, राइट, शेख कहलाने के काबिल थे, शेख मानने के काबिल इंसान थे, ठीक है ना। तो भाई जाहिर है ऐसी शख्सियत के लिए तो फिर एक ही पर्सनालिटी के अंदर दोनों चीजें मौजूद हैं, और वो क्यों भाई किसी और तरफ देखे। हाँ उनके वालिद ने उनको बैत करवाया था हजरत अब्दुल हई आरफी रहमतुल्लाह अलैह के पास, ठीक है ना। तो वालिद के हुक्म के ऊपर जो है वो अब्दुल हई आरफी रहमतुल्लाह अलैह के पास जा करके बैठा करते थे, सुना करते थे उनकी बातें, उनसे जो है वो सवाल पूछ लिया करते थे, ठीक है। लेकिन वो भी वालिद के हुक्म पे हो रहा था, ठीक है ना, कि दोनों बेटों को अब मुफ्ती रफी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह और मुफ्ती तकी उस्मानी, ठीक है ना। तो भाई ऐसे लोग तो फिर यानी लाखों भी नहीं, करोड़ों में एक आध होते हैं ना, लेकिन बाकियों का तो ऐसा मामला नहीं होता, ठीक है। तो अब तो वो बात जिसको समझ में आएगी कि भाई जो जन्नत जहन्नुम का मामला है वो तो इल्म की बुनियाद पर होता है ना, वो खाली इखलास की बुनियाद पे तो नहीं होता, वो खाली मोहब्बत की बुनियाद पे तो नहीं होता कि हाँ जी बड़ी मोहब्बत थी तो जन्नत मिल जाएगी, ठीक है ना। इल्म तरीका क्या है, नबी अलैहिस्सलाम क्या सिखाने के लिए आए थे, खाली मोहब्बत की बातें करने के लिए आए थे, मोहब्बत का तरीका सिखाने के लिए नहीं आए थे, ठीक है। तो तरीका कौन बताएगा, तरीका तो फिर उस्ताद बताएगा ना और शेख बताएगा, ठीक है। तो इसका ताल्लुक तो भाई है ही कयास के साथ। अब आपको समझ में नहीं आया कि कयास जो है ना उसका क्या मुकाम होता है और क्या उसकी हैसियत होती है, तो फिर कौन बात करे फिर। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह पहले इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआ करते थे, फिर उसके बाद अपने वालिदैन के लिए दुआ करते थे। फिर अगर उस्ताद के पास जाए तो दरवाजे पर इंतजार करे, उस्ताद को बाहर निकलने के लिए घंटी ना बजाए, दरवाजा ना खटखटाए, ठीक है। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन, हजरत उबई इब्ने काब रजी अल्लाह तआला अन के पास कुरान पढ़ने के लिए जाते और कभी भी उनका दरवाजा नहीं खटखटाया करते थे। नहीं, आपने ये चारों मुत्तफ़ा अलैह अदल्लाए शरिया किसी एक से भी साबित हो जाए तो तकलीद करनी है, नहीं ये इतना सिंपल नहीं है जितना आपने देखा है, ठीक है। जब आप किसी चीज के नस मानने के ऊपर अगर तुल जाए ना कि हाँ भाई ये तो नस है, तो फिर उसके बाद जो है ना ये तकलीद को की बुनियाद पर आप नस नहीं साबित कर सकते किसी चीज को, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि चारों बिल्कुल इक्वल लेवल के ऊपर है। बहरा और कोई मैंने मैसेज अगर मिस कर दिया हूँ, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जिसने, आपने लिखा कि जिसने मुझे एक हर्फ भी बताया मैं उसका गुलाम हूँ, वो चाहे मुझे बेचे आज़ाद करे या गुलाम बनाए रखे जी। लेकिन ये भी कोई नस नहीं, इस वाले कॉल अली रज़ी अल्लाह अन्हु के इस कॉल से जो है वो नस साबित नहीं होती, कौन ज़्यादा किसकी बात को तरजीह दी जाएगी और किसकी बात को कम तरजीह दी जाएगी उस पहले के मुकाबले में, ये बात इस किस्म के अखबार से साबित नहीं होती। बहरहाल तो अब्दुल्ला इब्ने बास रतान का अपने उस्ताद के साथ अदब का जो मामला था उसके ऊपर एक पॉइंट हो गया। फिर अगला पॉइंट है कि हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन सवार होने लगे तो इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन ने उस्ताद के एहतराम की वजह से उनके रुकाब यानी पाँव रखने की जगह को हाथों से थाम लिया था। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सातवीं गली में भी उस्ताद के घर की तरफ कभी पाँव करके नहीं सोते थे, उस्ताद के घर की तरफ पाँव करके नहीं सोते, और वो सात गली दरमियान में होते थे दोनों के घर में। तो इतना जब इंसान कॉन्शियस हो जाता है ना चीजों का, अदब का इतना उसको लिहाज शुरू हो जाता है, तो फिर वो ऐसी ऐसी चीजों का भी जो है ना वो यानी अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी आई एम श्योर इसका के तमाम करते होंगे कि कभी भी होटल में जाएंगे ठीक है, स्पेशली जब हरम में जाते हैं या मदीना तैयबा भी जब जाते हैं खसूसन वहां पे तो और भी ज्यादा इसका ध्यान रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, कि जब भी होटल के अंदर गए हैं तो वहां पे जो बेड्स पड़े हुए होते हैं तो सबसे पहले ये देखा देखा जाता है कि जी सिरहाना किस तरफ है और पैताना किस तरफ, यानी सर किस तरफ है और पैर किस तरफ है और किबला किस तरफ है ठीक है। तो अगर किबले की तरफ जो है ना वो पैर यानी बिस्तर इस तरह से रखा होगा कि जी किबले की तरफ पैर जा रहे हैं तो उल्टे सो जाएंगे लेकिन पैर किबले की तरफ नहीं होगा ठीक है। बल्कि कुछ लोग तो माशाल्लाह बिस्तर को हिलाना भी शुरू कर देते हैं यार कमरे के अंदर इधर से उधर जो है वो ठीक है, कोई भी तरीका इख्तियार करते हैं, लेकिन ये चीज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों ने हमारे अंदर ये चीज डाल दी, अल्लाह का शुक्र है कि क़िबले की तरफ पैर करके हमने सोना नहीं है। तो अब जिस तरह से हम काबतुल्लाह का ख्याल रखते हैं और मस्जिद नबी का ख्याल रखते हैं तो जो इल्म के दर के ना बड़े मुकामात के ऊपर फाइज थे ठीक है इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह, तो वो अपने उस्ताद के साथ ऐसे मामला किया करते थे। हमारे हजरत कभी लोग बताते हैं कि कभी बगैर वजू के जो है ना अपने शेर के पास नहीं गए, शेर के पास गए ही नहीं कभी वजू के बगैर। हमाद इब्ने सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह की बहन का बयान है कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हमारे घर के बहुत से काम किया करते थे। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने 40 साल से कोई भी ऐसी नमाज नहीं पढ़ी जिसके बाद मैंने अपने उस्ताद इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के लिए बख्शिश की दुआ ना मांगी। उस्ताद से ऐसी मोहब्बत हो कि इंसान नमाज पढ़े तो पहले उस्ताद के लिए दुआ मांगे फिर माँ बाप के लिए दुआ। तो जो पहला जुमला था ना वो पहला जुमला जो था वो यानी होता है ना कि ग्राउंड बनाने के लिए था ठीक है ना, कि माँ बाप की तरह, क्योंकि तुम लोग जो है ना वो तुम्हारे नजदीक सिर्फ माँ बाप ही की इज्जत है चाहे करो या ना करो, करते तो बहुत कम ही लोग हैं वैसे, लेकिन कहते सारे के सारे हैं कि माँ बाप की इज्जत माँ बाप माँ बाप माँ बाप है ना सब, चाहे उसने जब वो ना वो कभी किसी से बात हो रही थी बहुत सालों पहले की बात है कि भाई आपकी जब शादी होगी तो आप जो है वो क्या रस्म व रिवाज और जो गलत काम होते हैं तो आप वो करेंगे आप नहीं करेंगे, बहुत बहुत सालों पहले की बात है किसी से पूछा था हमने, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, हाँ भाई मैं तो नहीं करना चाहता लेकिन आखिर माँ बाप का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना, तो उधर वो माँ बाप के गले डाल दिया ठीक है, उनके सर बांध दिया कि हाँ भाई अगर कोई गलत काम होगा ना तो माँ बाप की वजह, माँ बाप का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना, और माँ बाप का ख्याल जो है वो हमारे दीन के अंदर इतना माशाल्लाह सबसे अहम चीज है कि बस उसके आगे तो कोई बोल ही कुछ नहीं सकता ठीक है। तो अदर जो है ना वो इस मुआशरे के अंदर थोड़ा सा ग्राउंड बना रहे हैं पहले जो से ठीक है ना, थोड़ा सा लेकर के आ रहे हैं जरा बराबर लेकर के आ रहे हैं, और फिर आखिरी जुमले आने आने तक जो है इतने सारे वाकयात बयान करके आखिरी जुमले के अंदर जो है ना फिर वो असल मकसद की तरफ सुनने वालों को लेकर के आ रहा है कि भाई पहले उस्ताद आता है फिर उसके बाद बाप आता है ठीक है, और ये उस्ताद जो है ये वो कंप्यूटर साइंस वाला उस्ताद नहीं आ रहा है ठीक है, या इंजीनियरिंग या जो है वो मेडिकल साइंस वाला या लॉ वाला उस्ताद यहाँ पे मुराद नहीं है, यहाँ पे जो रूहानी उलूमुल आलिया जो असल आला उलूम है कुरान मजीद का इल्म, नबी अलैहिस्सलाम के हदीस मुबारक सीरत मुबारक का इल्म फिकह का इल्म ये है उलूमुल आलिया ठीक है। फिर उलूमुल आलिया इनके नीचे आते हैं, उलूमुल आलिया ये भी कंप्यूटर साइंस नहीं है, ये भी जो है वो इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स और ये नहीं है, हाँ अलबत्ता किसी तरीके से कुछ ना कुछ दर्जे में उलूम आलिया मैथमेटिक्स उसके अंदर आ जाते हैं। कंप्यूटर साइंस अगर आएगा तो वो जो है वो वेबसाइट बनाने के लिए, हमें दीनी उलूम की वेबसाइट बनानी तो उसके लिए कंप्यूटर साइंस उलूम आलिया यानी टूल्स के तौर पर। लेकिन असल में उलूम आलिया जो है वो लैंग्वेजेस होती हैं, लैंग्वेजेस, अरबी अदब, अरबी नहव सर्फ, ठीक है, और जो भी उसके लिए बलागा वगैरह सब कुछ है वो ये सब उलूम आलिया होते हैं। मंतिक ये भी उलूम आलिया है, ठीक है। बाकी जो आपके इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और बाकी सब कुछ है तो ये तो दर्जे के एतबार से उलूम आलिया से भी नीचे इनका दर्जा आता है, और जिसको के अक्सर हजरात तो उसको फनून ही कहते हैं सारी, इसको इल्म तो कहते भी नहीं है, फनून कहते हैं इसको, फन, ठीक है, अंग्रेजी वाला नहीं उर्दू वाला ना। तो हजरत जो है वो असल मकसूद जो था ये था बयान करना, लेकिन पहले थोड़ा सा ग्राउंड बनाया, फिर उसके बाद अपने असल बात के ऊपर आए। अब अल्लाह ताला बात की समझिए तो आप हमारे दुआ ही कर सकते हैं, वरना होता यही है कि बड़ा आगे पीछे फिरते हैं, और जब जब वो आता है ना कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आती है ना कि अम्मा अब्बा कुछ कह रहे हैं और शेख कुछ कह रहे हैं, उस वक्त अम्मा अब्बा याद रहते हैं उसके बाद, ठीक है ना, उसके बाद शेख साहब याद नहीं आते, ठीक है ना, तो वो समझ नहीं रहे होते इस बात को, वो तो बाद में अल्लाह ताला दिखाएंगे तो फिर बात समझ में आएगी, जब दुनिया में अल्लाह ताला दिखाए या कब्र में जाकर के दिखना है उस वक्त तो बात सब समझ में आ जाएगी कि शेख जो है वो अपनी जात के लिए तुम्हें ये बात नहीं समझा रहा, शेख का कोई जाती फायदा नहीं था कि वो जो है वो तुम्हें माँ बाप से हट करके कोई बात करने की तरगीब दे रहा था, है ना, उसको क्या तुम क्या लड्डू पेड़े ला कर क्या दे दोगे उसको ला करके, ठीक है ना, कि उसको क्या मिलेगा कि तुम्हें जो है वो अपने माँ बाप से जो है वो दूर करे या तुम्हारे माँ बाप को तुमसे नाराज करे या तुमको माँ बाप से, उसको कुछ नहीं मिलेगा इस बात से, वो तो सिर्फ इस वजह से ये बात कह रहा है कि तुम्हारी और तुम्हारी आल औलाद की जो है ना वो आखिरत की सलामती है इसके अंदर, ईमान की सलामती है इसके अंदर, ठीक है ना। तो तुम जो शेख की बात को डिनाई कर रहे हो और जो तुम उसको यानी रिजेक्ट कर रहे हो ना, शेख का कोई मसला नहीं है, मसला शेख का नहीं है, मसला तुम्हारे ईमान का है, मसला तुम्हारे आखिरत का है, ठीक है ना। तो ये बात जो है वो नहीं समझ में आती, क्योंकि आखिरत ईमान ये सब तो किताबी बातें हैं, ये तो थ्योरी है, इसका प्रैक्टिकलिटी से तो कोई ताल्लुक नहीं है। प्रैक्टिकल जब मामला आएगा तो उस वक्त वही अपना खानदान ही चलेगा, फिर उसके बाद वही सारा का सारा प्रैक्टिकलिटी से ताल्लुक रखता है ना। रियल लाइफ तो फिर खानदान है, दीन तो साइड में दिल के खुश करने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, दीन की तो ये हैसियत हमारी जिंदगी के अंदर ना, तो जाहिर है जब दीन की हैसियत ये है तो फिर दीन वालों की हैसियत ज्यादा कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है दीन वालों की हैसियत ज्यादा, ठीक है। मैंने सुना है, आप अपने सुने को तो रहने दें, आप ये बताएं कि हदीस मुबारक है कि नहीं, कि मैं तुम्हारे वालिद की तरह हूँ क्योंकि मैं तुम्हें तालीम देता हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप इलाबोरेट करके जरा बताएं, सही हदीस कोट करें तो फिर उसके ऊपर बात कर सकते हैं बाद में। एनीवे मकसद तो खैर जो है सो है, वो कोई इससे तब्दील तो नहीं कर रहा था ना, मुतालिये की अहमियत। फरमाते हैं कि तालिबे इल्म का सबसे ज्यादा पसंदीदा शुगल मुताला होना चाहिए, जैसे कि हमारे अकाबिर का तर्ज रहा है। चंद एक मिसालें मुलाहिज़ा फरमाएं। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू यूसुफ के बाद दूसरे जो थे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट शागिर्द इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह थे, तो वो घंटों कुतुब का मुताला क्या करते थे। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह किसी किताब को तायराना नज़र से देख लेते तो फरमाते थे कि किताब के मुबाहिस यानी उसके अंदर जो बहस और जो डिटेल्स और डिस्कशन वगैरह लिखी हुई हैं वो 15 साल तक मेरे हाफ़से में महफूज हो जाते। अब वो अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह जो है ना वो फिर वो जो फोटोग्राफिक मेमोरी है ना, उनके बहुत सारे वाक़ात से बात साबित होती है कि उनके पास फोटोग्राफिक मेमोरी अल्लाह ताला ने दी थी। बहुत सारे आजकल के बच्चों को यानी बाकायदा अमरीका वगैरह के अंदर तो ऐसे बच्चों को जो है वो प्रोग्राम वगैरह के अंदर लेकर के आते हैं जिनके पास ये वाली फोटोग्राफिक मेमोरी होती है। तो वो ये इनकी असल बात नहीं है कि इनकी फोटोग्राफिक मेमोरी थी, इनकी असल बात जो है ना वो तो आगे आएगी इंशाल्लाह इसके अंदर, असल जो इनकी बात थी, क्योंकि वो तो ऊपर से लेकर के आए हुए थे ना, यहाँ भी फोटोग्राफिक मेमोरी या किसी के पास नहीं है तो वो क्या करे, ठीक है ना। असल तो वो अदब था, असल तो वो मुकाम था, और असल तो वो मुताले की तलब थी जिसने उनको हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बनाया था। खैर, इमाम मुजदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अपने उस्ताद इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की किताब का 50 बरस तक मुताला किया और हर मरतबा मुझे उससे नई बातें सीखी। ठीक है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह ये आजिज भी अल्लाह का शुक्र है एहसान बयान करते हुए जाहिदी से नेमत के तौर पर कह सकता है कि अपने शेख के जो ऑडियो बुक्स है ना, ये बुक्स तो अब हमने इतनी नहीं पढ़ी, लेकिन जो बयानात होते हैं वो भी तो ऑडियो बुक्स ही होते हैं ना, एक एक बयान को इतनी दफा सुना, इतनी दफा सुना कि हमारे जो जो जब हम बिल्कुल शुरू की बात है, शुरू के 2-3 सालों की बात है, कि हम जो है ना वो बैठे थे हजरत की सीडीज बना रहे थे, हमारे पास सीडी रिकॉर्डर होता था, बल्कि उस जमाने में तो लैपटॉप से ही जो है ना वो सीडी बर्न करके कॉपी में बना रहे होते थे। तो अब उसके ऊपर जो है ना वो बहुत सारी सीडीज बन के किसी ने भेज दी, लेकिन वो टाइटलिंग नहीं हुई थी उसके अंदर, कौन सा बयान है, कौन सा बयान है इसके सीडी के अंदर। तो मेरा ये काम था कि मैं प्ले करता था और विद इन 30 सेकेंड्स ना आई वॉज एबल टू टेल कि ये कौन सा वाला बयान चल रहा है, ठीक है ना। तो वहां पे जो हजरत के खलीफा साहब होते थे, तो उन्होंने कहा ये जो है ना, ये काशिफ साहब जो है ना, ये तो फिनाफिल बयान है, ये तो हजरत के फिनाफिल बयान है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई, तो अपनी फजा फरमाई, तो यही होता था, यानी हर मरतबा सुनते थे और नई बातें उसके अंदर पता चल रही होती, तो एक खजाना हाथ आ गया। और जब खजाना हाथ आता है तो फिर क्या चीज होती है, क्या उस खजाने की कदर जो है, एक तो सबसे पहले अपने इल्म के अंदर लेकर के आना, और फिर खजाने में दूसरों को हिस्सा हिस्सा देना, खजाने को दूसरों तक पहुंचाना, ये जकात होती है खजाने की। अगर जकात ना हो तो फिर वो खजाना जो है वो गल सड़ करके जो है ना वो अब हमारे लिए नुकसानदेह बन जाता है, अगर जकात अदा नहीं की जाए, ठीक है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है दोनों करने की, कुछ ना कुछ तौफीक अता करना है, अल्लाह कबूल भी फरमा लें। तौफीक तो मिल गई, लेकिन कबूलियत जो है ना ये अभी नहीं पता, ये तो आखिर में जाके पता चलेगा। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जब मुताला करते थे तो इतनी जाज़बियत से पढ़ते कि कई मरतबा खादमा खाना करीब से उठा के ले जाती और हजरत को पता भी नहीं, ठीक है। तो ये जो मुताला है ना, ये तो यानी किताबें जो है वो अपना अपना क्या है, मदरसा अपना वतन नजर आए और किताबों के वरक अपना कफन नजर आए, ये जो जो इल्म के मुतवाली होते हैं यानी तलाशी होते हैं, तो वो इस तरीके से मुताला करते हैं। इस रास्ते में जो इस जमाने के अंदर सबसे बड़ी रुकावट और सबसे डेडली रुकावट है, वो ये सोशल मीडिया और सेलफोन का इस्तेमाल, ठीक है, यानी हेल फोन का इस्तेमाल, स्मार्टफोन्स, ठीक है। क्योंकि स्मार्टफोन जो है ना, ये एक ऐसा दलदल है, ऐसी ये चीज है कि जो इसके अंदर घुस गया ना, तो फिर वो उसको अपने तरफ ऐसी खींचती है कि उसके निकलना फिर जो है ना वो मुमकिन नहीं रहता। तो हमें तो बाकायदा उलमा ने, मैं पहले भी किसी क्लास में बता चुका हूँ कि किसी आलिम ने मुझे बताया कि वो रोजाना के हिसाब से, अब असल में मुझे तो याद पड़ता है कि उन्होंने 400 सफ़े का, और एक्चुअली वो इतना मुताला करने वाले थे कि उनसे बईद नहीं है कि वो रोजाना 400 सफ़ात पढ़ सफ़ात पढ़ लेते हो, लेकिन चलें अगर टू मच आपको लगता है तो हम 40 के ऊपर आ जाते हैं ना, रोजाना 40 सफ़ात का मुताला करते थे। कहते हैं काशिफ भाई जब से मेरे पास ये आए ना स्मार्टफोन, तो मैं कहते हैं मैं 10 सफ़ात का भी मुताला नहीं कर पाता, ठीक है ना। अब अच्छे खासे जो है ना वो किताबी आलिम और अच्छे खासे जो है वो यानी तहकीकी आलिम, उनके साथ जो है ना वो ये हुआ, क्योंकि यानी अच्छा कोई ऐसा इस्लाही ताल्लुक भी नहीं था, वो होता है तो फिर मशाइख की तवज्जुहात और उनकी डांट डपट से जो है ना बंदा फिर ठीक हो जाता है, सीधा हो जाता है, और वो अगर ना हो तो फिर तो ये सेलफोन जो है ना वो कहीं का नहीं छोड़ता उसके पास। इसी वजह से हमारे अकाबरीन जो है, खुसूसन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो है, वो अपने मदरसे के अंदर फोन के इंतहाई खिलाफ है, मदरसे के एडमिशन जो है ना वो फोन के साथ नहीं लेते, ठीक है। और अलहमदुल्ला हमारे भी अपने मशाइख के यहाँ भी ये जो 17, 18, 19 साल की उम्र तक यानी बहुत कम लोगों के पास फोन, इस दौर के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नौजवान लड़के लड़कियां हैं जो कि 18 साल के हो चुके हैं लेकिन उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। अगर अगर 16 साल की उम्र में मिला भी ना, तो वो भी बटन फोन, नोकिया का फोन, ज्यादा से देखो बटन नोकिया फोन कह देते हैं, बटन फोन, ठीक है। तो भाई मुमकिन है, इस दौर के अंदर भी मुमकिन है, लेकिन हर चीज चीज का कोई तरीका होता है ना, कोई सलीका होता है ना। अगर आप तरीका सलीका
अप्लाई ना करें, उसको ना अपनाएं, और फिर जो है वो खाली जो है ना वो शोर मचाते रहें कि नहीं जी ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये कैसे हो सकता है, और सब करते हैं, और सारे खानदान के बच्चे जो है उनके पास फोन है, और सारे मोहल्ले के बच्चों के पास फोन है, तो हम अपने बच्चों को रोकेंगे तो वो रिबेल कर जाएगा, और वो जो है वो उखड़ जाएगा, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाई बेशक आप अगर कोई तरीका, जो तरीका है काम करने का, वो अगर आप तरीका इख्तियार ना करें, उससे आप दूर रहें, कोसों दूर भागें, ठीक है ना, तो फिर तो जाहिर सी बात है अगर आप इस किस्म की कोई एक चीज जो है ना वो बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू इन्फोर्स करने की कोशिश करेंगे अपनी औलाद के ऊपर, तो फिर तो उसने रिबेल करना है। क्या उसके अंदर मुश्किल बात है इस बात को समझना, उसने तो रिबेल करना है, ठीक है ना। तो भाई एक पूरा निजाम होता है ना, एक तरीका होता है ना, ठीक है ना, उस तरीके के मुताबिक आप काम करें तो फिर क्यों रिबेल करेगा बच्चा। इतने हजारों बच्चे जो है वो तो रिबेल नहीं कर रहे, आपका एक बच्चा रिबेल कर जाएगा खाली, भाई वजह ये है कि आप जो है वो निजाम से भागते हैं, आप जो है वो कीड़े निकालते हैं उसके अंदर, आप जो है वो हर वक्त तनकीदें करते रहते हैं, हर बार जो है वो उल्टी सीधी जो है वो अपनी हुज्जतें पेश करते रहते हैं। तो अब जो है वो आप जो चीज रोकना चाहें भी वो भी आप नहीं रोक सकते, क्योंकि बगैर माहौल के, बगैर निजाम के मुमकिन ही नहीं है सारी चीजें, ठीक है। तो क्या करेंगे, जिंदगी तो गुजर जाएगी ना बगैर निजाम के, और गुनाहों के साथ जो है वो आपकी भी, और आपकी औलाद जो है वो भी गुनाहों के दलदल के अंदर जो है वो फंसती चली जाएगी। तो इफ यू आर ओके विद दैट देन गो राइट अहेड, क्या क्या किसी किसी और का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ आपका और आपकी औलाद का नुकसान, ठीक है। अल्लाह ताला ने बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर के अंदर जो है ना वो ऑप्शन हमें दिए हुए कि हम उधर जुड़ जाएं, चले जाएं, तो फिर जो है ना हम भी बच जाएंगे, हमारी औलाद बच जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं निजाम का हिस्सा बनते, तो फिर आप इवन अगर दीनी किताबें में पढ़ने वालों में से होंगे ना, लेकिन आपने अपने आप को निजाम से दूर करके रखा हुआ है, इस्लाई निजाम से दूर करके रखा हुआ है, इवन देन आप जो है वो हेलफोन की फितनों से नहीं बच सकते। खाली जो है वो एडमिशन कर लेना कोई थोड़ी निजाम कैसा बनना होता है कि हाँ भी मैंने इन मदरसे में दाखिला ले लिया तो अब जो है ना बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, ये खाली दाखिले से कुछ नहीं होता। निजाम का मतलब तो भाई यानी आप जो है वो बाकायदा इस्लाह की नीयत से जो है वो एक ताल्लुक बनाए, और जो है वो उस निजाम का हिस्सा बने, आप उस चीजों को एडॉप्ट करें, बाकी जो चीजें उसके खिलाफ जा रही हैं उनको जो है वो अपनी जिंदगी से निकालें, अपनी औलाद की जिंदगी से निकालें, ये होता है निजाम का हिस्सा बनने का, ठीक है। फिर जो है वो अल्लाह ताला बड़ी आसानी से आप आपके लिए यानी आप बेसाख्तगी के साथ जो है वो अपने आप को फिर फितनों से बचा सकेंगे, और आपके लिए आसान हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस दौर के अंदर मुताले के रास्ते पर सबसे बड़ी रुकावट है ना वो ये सेलफोन बन रहा है। सबक की पाबंदी, अपने सबक की पाबंदी जरूर करनी चाहिए, नीज सबक में नागा नहीं होने देना चाहिए। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मजलिस में बैठते थे, और मसाइल पर जब बहस होती तो जो बात साबित होती इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह शुरू शुरू में उसको लिख लिया करते थे, ये एक अहम जिम्मेदारी थी जो उनके सुपुर्द थी, ठीक है। तो सबक की पाबंदी, हमारे जब यार जिसने पढ़ना शुरू किया था तो गुजरात के एक मुफ्ती साहब होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला उनको सलामत रखे, कल भी उनसे बात हुई थी व्हाट्सएप पे, तो वो फरमाया करते थे कि काशिफ भाई, मुझे काशिफ भाई कहते थे लेकिन उससे उम्र में बहुत बड़े हैं, तो एक दिन का नागा हो जाए ना तो हमारे मशाइख फरमाते हैं कि उसकी नहुसत 40 दिन तक जाती है, एक दिन सबक का नागा उसकी नहुसत 40 दिन तक जाती है, ठीक है। तो नागा नहीं करना है, चाहे बेशक जो है ना हम मुख्तसर क्लास कर लें, हम जो है वो कहीं और बैठ करके क्लास कर लें, लेकिन नागा नहीं, ठीक है। बहरहाल ये इन वालों की बातें हमें भी अल्लाह ताला इनका कुछ जवाब अता फरमा दें, बाकी बातें इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर करेंगे। बड़ी अहम बात थी जो कि आज सुबह खवातीन में भी हो गई है, वो आज वहाँ तक हम पहुँच नहीं सके, इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर इसके ऊपर बात करेंगे। वाकुम अलहमदिल्ला, अस्सलाम वालेकुम।